सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे सभी युवा साथियों नमस्कार। आज 21 फरवरी 2019 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की कुछ ही दिनों के बाद 3 मार्च से 17 मार्च तक होने वाली क्लासेस के में दाखिला लिया है। और इन दोस्तों के नाम हैं विनीत सिंह, आप सुकमा छत्तीसगढ़ से हैं, और मुकेश कुमार, आप नारायणपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो विनीत और मुकेश, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब दिन ज्यादा नहीं रह गए हैं, उस दिन की हम सभी एकेडमी के साथी बड़ी व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप सब भोपाल में हाजिर होंगे और उस क्षण की जब हम एक हॉल के अंदर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे और बोल चाल के दौरान एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे। मैं जोर देकर के कह रहा हूं मित्रों, महसूस भी कर पाएंगे। और मेरा एक नियम होता है कि ये जो 15 दिन का जो समय होता है पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए होता है, इसे मैं अपना ज्ञान कुंभ कहा करता हूं। ये मेरे लिए ज्ञान कुंभ है जो साल में 2 बार आता है। मेरा पूरा वक्त आप लोगों के लिए होता है, या तो क्लास में मैं आप लोगों से मुखातिब रहता हूं और अगर थोड़ा सा भी गैप मिलता है तो इस बात की पूरी छूट आप लोगों के लिए होती है कि आप सब मेरे पास आए और मुझसे बातचीत करें, अपनी समस्याओं के बारे में पूछें। और इसे मैं एनकरेज करता हूं, मैं बोलकर बुलाता हूं कि नहीं, आप सब आइए और मुझसे बात कीजिए, मैं भी आप सबसे बात करके बहुत कुछ सीखूंगा। तो ये 15 दिन पूरी तरह से आप लोगों में अवगाहन करने का ही मेरा दिन होता है दोस्तों। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब उन 15 दिनों को आने में अब तो 15 दिन भी शेष नहीं रह गए हैं। और इसी के साथ ही एक अच्छी बात यह भी हुई है कि 2 दिन पहले आपके बकायदे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का विज्ञापन आ चुका है और आज मैं मुख्य विषय के रूप में इसी के बारे में कुछ बातें करूंगा, उसे आप कह सकते हैं कि सलाह दूंगा या निर्देश दूंगा या कुछ पॉइंट्स दूंगा जिसके आधार पर आपको हो सकता है कि निर्णय लेने में कुछ सुविधाएं हो जाए। तो मुख्य विषय के तहत मित्रों मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन आइए कुछ दूसरी खबरों को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह दोस्तों कि डॉक्टर नामवर सिंह जी नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, डॉक्टर नामवर सिंह, मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर नामवर सिंह से अपरिचित होगा। केवल परिचय की ही बात नहीं है बल्कि उनकी चीजों को पढ़कर, उन्हें सुनकर शायद ही कोई अप्रभावित हुए बिना रह सके। मित्रों, मैं अपने आप को उन सौभाग्यशाली लोगों में मानता हूं जिन्हें नामवर सिंह जी से बात करने का मौका मिला। पढ़ने का मौका तो जब मैं स्टूडेंट था उसी समय मिल चुका था, जिन्हें देखने का मौका मिला, जिनसे बातचीत करने का मौका मिला और जिनसे आशीर्वाद लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और अभी जब दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था तब भी मुझे नामवर सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अद्भुत प्रतिभा के धनी, मतलब मैं जब उनकी बात सुनता था तो आश्चर्य में पड़ जाता था कि इनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर है या मानवीय दिमाग है। अपने किस समय की घटनाओं की चर्चा किया करते थे, किस समय की पढ़ी हुई चीजों की चर्चा किया करते थे, किन किन डिसिप्लिन्स की वो बात करते थे। लगता था कि इनके दिमाग में ये सारी बातें मौजूद कैसे हैं। अद्भुत स्मरण शक्ति, चाहे घटनाओं से संबंधित हो, चाहे फिलॉसफी से संबंधित हो, चाहे किसी के कथन से संबंधित हो, सीधे सीधे वो लोगों के कथन को कोट किया करते थे। और जो विश्लेषण की क्षमता होती थी वो अद्भुत होती थी। और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत किसी घटना या साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण कर पाता हूं तो उसमें 2 लोगों का बहुत जबरदस्त हाथ रहा है। उसमें एक है नामवर सिंह जी और दूसरे हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वो पहले नहीं रहे थे और अब नामवर सिंह जी भी नहीं रहे, तो उनके जाने के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य के जो दो सबसे बड़े पिलर्स थे, जो सबसे बड़े मजबूत पिलर्स थे, या कह लीजिए कि जो बहुत बड़े स्तंभ थे, वो ढह गए हैं और बड़े विचित्र किस्म का एक सूनापन सा महसूस हो रहा है। नामवर सिंह जी अब आप हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारी स्मृतियों में रहेंगे और हमारी स्मृतियों में रखकर हम आपको अमर बनाने की अकृतज्ञता, अमर बनाने की कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और आपको हम जाने दें यह अकृतज्ञता नहीं दिखाएंगे। तो मित्रों, डॉक्टर रामवर सिंह जी नहीं रही, यह एक खबर थी और आपने बकायदे रेडियो में देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहां तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी तक ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आप समझ सकते हैं कि नामवर सिंह जी किस स्टेचर के व्यक्ति रहे होंगे। दो खबरें हैं और मित्रों, पहली तो यह कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आपको मालूम है कि जो जाधव जी का केस है वो चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पाकिस्तान इस कोशिश में था कि इस केस की सुनवाई न की जाए, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके इस अनुरोध को किनारे कर दिया है और कल टीवी चैनल पर काफी दिखाया भी गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो इस पर आपको थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर संभव हो सका तो मैं कुछ बातें करूंगा, लेकिन कह पाना निश्चित रूप से अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है और इस बार मेंस की दृष्टि से, वह है दोस्तों, अभी सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो भारत आए हुए हैं। आपने न्यूज में सुना हुआ है सऊदी अरब के प्रिंस, नो डाउट भारत और सऊदी अरब के जो संबंध हैं वो काफी पुराने संबंध हैं और हमारे तो 40 लाख लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वे वहां से विदेशी मुद्रा मतलब भारत में भेजते हैं जो काफी बड़ी मात्रा में होती है। तो दोनों के जो आर्थिक संबंध हैं और दूसरे बहुत ही घनिष्ठ, तेल का तो वो क्षेत्र बहुत जबरदस्त क्षेत्र है ही है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो केवल सऊदी अरब तक की बात नहीं कर रहा हूं, भारत और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर कोई प्रश्न मेंस में पूछा जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता, तो फिर महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है मित्रों कि अब चूंकि कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि अगर उन अलग अलग घटनाओं को एक धागे में पिरो दिया जाए तो फिर एक प्रश्न हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न तैयार हो जाता है सिविल सर्विस के लिए, और वह प्रश्न होगा बेसिकली मध्य पूर्व एशिया को लेकर। मध्य पूर्व एशिया जिसका दूसरा नाम पश्चिम एशिया भी है, आपको मालूम है, आप सिलेबस में जाकर के देखें, भारत के साथ जिनके संबंध हैं, जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें नेबरिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, पड़ोसी राष्ट्र, और नो डाउट ये भारत के लगभग लगभग पड़ोसी राष्ट्र जैसे ही हैं। पाकिस्तान ने अभी भारत पर जिस तरीके से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है वो आपके सामने है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में जिस तरह की खलबली मची हुई है उसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप साहब तक ने यह कह दिया कि भारत के सपोर्ट के लिए हम तैयार हैं, ट्रंप ने कह दिया, तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक खलबली सी है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि ईरान भी पाकिस्तान से परेशान है, वहां भी कुछ दिनों पहले ही इस तरह के अटैक हुए थे। अफगानिस्तान में अभी अमेरिकी सेना मौजूद है और अमेरिका ने कह दिया है कि वह अब अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाएगा, इसको लेकर के भी अफगानिस्तान थोड़ा सा चिंतित है। चिंतित इसलिए है कि इससे बहुत पहले जब सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान में थी और जब रूस ने अपनी सेना को वापस बुलाया तो नो डाउट कि वो तो अफगानिस्तान को बहुत राहत देने वाली बात थी, लेकिन स्थिति बहुत खराब हो चली थी और फिर अमेरिका ने अपनी सेना भेजी थी, क्योंकि अमेरिका अगर अपनी सेना हटा लेता है तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो आतंकवादी शक्तियां हैं वो फिर अफगानिस्तान में अपना सिर उठाने लगेंगी, एक अव्यवस्था फैल जाएगी, यानी यहां भी आपको आतंकवाद की स्थिति कुछ दिखाई दे रही है। तो इसराइल भारत के सपोर्ट में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये सब के सब पश्चिम मध्य पूर्व एशिया के देश हैं। तो यहां पूरी स्थितियों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मध्य पूर्व एशिया अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, या पश्चिम एशिया कह लीजिए, भारत के साथ उसके संबंध, चाहे फिर ये तेल की राजनीति के संदर्भ में हो, और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो आतंकवाद के संदर्भ में, यानी कि आतंकवाद और पश्चिम एशिया और भारत, इन तीनों का आपस में अगर आप जोड़ लगा लेंगे तो एक अच्छा सिविल सर्विस मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर तैयारी करें, और बहुत संभव अगर होगा तो मैं इस पर आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। कब कर पाऊंगा यह बताना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। दोस्तों, आज की करंट कंटेंट के रूप में एक अपारदर्शी न्यायपीठ टाइटल से आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, एक अपारदर्शी न्यायपीठ। खासकर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के एक समीक्षात्मक आर्टिकल है वो, और मैं चाहूंगा कि आप सब इसको जरूर पढ़ें और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का विज्ञापन आ चुका है, और मुझे लगता है कि विज्ञापन पढ़ने के बाद ही आप सब अपने अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा का एहसास करने लगे होंगे, जोश आ रहा होगा कि अरे अब तो विज्ञापन भी आ गया, तो परीक्षा के दिन कुछ ही तो बाकी रह गए हैं, परीक्षा बस होने ही वाली है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप अपने इस जोश को कितने समय तक बनाए रख पाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इतना पक्का है कि आप लोगों में जोश आ गया होगा, और अगर किसी में जोश ना आया हो तो फिर उसे सोचना चाहिए कि वो फॉर्म भरे या न भरे एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, यूपीएससी अपने ढंग से थोड़ी सी परेशान है कि 10-10, 12-12 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं और उसमें से 50% ही अपीयर हो पाते हैं, लेकिन अब यूपीएससी को तो अगर 12 लाख एप्लीकेशन मिले हैं तो स्वाभाविक है उसे तो सब 12 लाख लोगों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उतने बड़े से उतने सेंटर रखने पड़ेंगे, उतने इन्विजिलेटर्स रखने पड़ेंगे, उतने ही क्वेश्चन पेपर छपवाने पड़ेंगे, सारी व्यवस्थाएं तो उसको उतने ही करने पड़ेंगे, लेकिन पता लगा कि आने वालों की संख्या आधी ही होती है। इस स्थिति को लेकर के अब यूपीएससी ने सरकार से यह रिक्वेस्ट किया है कि जो आवेदन फॉर्म भर देते हैं तो उसे ही एक अटेम्प्ट मान लिया जाए। देखिए मित्रों, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि आवेदन फॉर्म भरने को ही अटेम्प्ट मान लिया जाए, बैठने को अटेम्प्ट माना जाए, ये थोड़ा सा अव्यावहारिक भी है। ठीक है, अगर इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए अगर यूपीएससी को थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी भी पड़ रही है तो क्या है, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन भर देते हैं तो बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं कि हम प्री में ना बैठ पाए, एक कारण ही नहीं, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, दूसरे काम आ गए, तबीयत खराब हो गई, हमारी तैयारी ठीक नहीं थी, सैकड़ों चीजें हो सकती हैं, तो ये तो स्वीकृत नहीं होगा। खैर चलिए, लेकिन अब आपके सामने जरूर ये हो सकता है कि द्वंद्व हो कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये द्वंद्व हो सकता है जो आप अपनी तैयारी के संदर्भ में देख रहे होंगे। भरें या ना भरें, इसका जो आधार होता है वो यही होता है कि भाई हमारी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। मित्रों, इसके बारे में मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहूंगा। पहली तो यह बात कि अगर आपके पास अटेम्प्ट पर्याप्त है तो आपको भरने के बारे में सोचना चाहिए, भले ही तैयारी पूरी न हुई हो। अगर आपको एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते लगता है कि देना बेकार है तो आप मत दीजिए, अटेम्प्ट अपना बचा लीजिए। बाय द वे, अगर अभी आप नहीं भरते हैं और महीने के भर बाद आपको लगता है कि यार नहीं भरना चाहिए था, एग्जाम में बैठ जाना चाहिए था, तो फिर तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो हमारा जो निर्णय है वो लगभग लगभग इस आधार पर होना चाहिए कि नियंत्रण हमारे हाथ में हो। तो अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आपको लग रहा हो कि 3 महीने में तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी आपको लग रहा हो, लेकिन कम से कम इस 3 महीने का इस्तेमाल आपको बाकायदे तैयारी करने में करना चाहिए। एग्जामिनेशन के कह लीजिए कि करीब करीब 3 महीने आपके रह जाते हैं, करना ही चाहिए। 3 महीने तो कम से कम तैयारी कीजिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो व्यर्थ नहीं जाती है। दूसरे आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, उनमें ये काम आएगा, और तैयारी करने की आपकी आदत हो जाएगी, और जो आप ये तैयारी करेंगे वो आपके अगले साल काम आएगा, ये बेकार तो नहीं जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ एक और भी जुड़ी हुई है, और वो ये कि आप हो सकता है कि इसलिए फॉर्म भर रहे हों कि कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, यार पेपर कैसे आते हैं, हम कितना कर पाते हैं, यानी कि आप अपने को तौलना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी तैयारी ही नहीं होगी तो आप अनुभव लेंगे किस चीज का, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके दो घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो कोई अनुभव नहीं हुआ। वो तो आप क्वेश्चन पेपर आपको बाहर मिल जाए तो अपने कमरे में दो घंटे के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए, वहां भी आपको अनुभव मिल जाएगा। नहीं, जो रियल अनुभव है वो सापेक्ष है, रिलेटिव्स। किस तरह से सापेक्ष है? मेरी तैयारी कितनी थी और मैं पेपर कितना सॉल्व कर पाया, और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बात इस मायने में होगी कि आप अपना एक सही मूल्यांकन, काल्पनिक मूल्यांकन नहीं, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ चुके हैं, आपको अपने नंबर पता लग गए हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या थे वो भी पता लग जाएंगे, आप कितनी दूर रह गए सफल होने से वो सब पता लग जाएंगे। तो एक सही मूल्यांकन आप अपना कर पाएंगे, और यह आपका सही मूल्यांकन आपको अगले साल की तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, निर्णय तो पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, और उसका क्रक्स कुल मिलाकर यह है कि फिलहाल आपके दिमाग में चाहे जो भी द्वंद मचा हुआ हो, निर्णय लगभग लगभग इस बात के पक्ष में लीजिए कि फिलहाल तो मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर ही देता हूं। एक बात लास्ट में और कि प्लीज बहुत सावधानी के साथ फॉर्म भरें। मुझे आश्चर्य होता है जब इस तरह के मेल मिलते हैं कि सर फॉर्म में मैंने इसकी जगह पर ये भर दिया, आश्चर्य होता है। छोटा सा फॉर्म होता है, इत्मीनान से थोड़ा सा भर लीजिए, इसमें भी क्या हड़बड़ी दिखानी है ना, तो इत्मीनान से भरने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: राजीव लोधी राजपूत इंदौर मध्य प्रदेश से, मिर्जा कामरान बेग भिलाई छत्तीसगढ़ से, राहुल कुमार समस्तीपुर बिहार से, स्वाति अवस्थी मुंबई से, और निशा निमोरिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।